नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको तुझको।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर बुराई के द्वारा किसी की परीक्षा नहीं लेता है और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर परीक्षा के द्वारा हमें विश्वास में बढ़ाता है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रतिदिन की तरह प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन जीवनदायक है जो हमारे जीवन में शांति और आनंद को देता है। प्यारे प्रभु, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सीखें तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ प्रभु, उन भाई बहनों से भी जो निराश हैं, परेशान हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, आप उनके भी सुधी लें ताकि वे आपके वचन के द्वारा इस बात को जानने पाएं कि आप उनकी चिंता करते हैं। आज आप उनसे भी बोले और बातचीत करें, हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और याकूब की पत्री एक अध्याय उसके 13 पद को पढ़ें। याकूब की पत्री एक अध्याय उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। मेरे प्रियो, पिछले पदों में हमने देखा है कि परमेश्वर अपनी संतान को परखता है, परंतु याकूब अति स्पष्ट कहता है कि वह मनुष्य को बुरी बातों से और पाप से नहीं परखता। इसलिए कहता है, वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। यहां एक बात पर ध्यान दें कि परीक्षा शब्द मूल भाषा में संज्ञा नहीं है, जैसा कि याकूब पहले परीक्षा शब्द काम में ले चुका है। यहां वह क्रिया शब्द काम में ले रहा है, अर्थात काम हो रहा है। मानवीय प्रवृत्ति है कि वह अपनी गलतियों के लिए, अपने दोष के लिए परमेश्वर को ही दोषी ठहराता है। मनुष्य का यह स्वभाव तो आदम के समय से ही पाया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने उसे खाया, और स्त्री ने भी ऐसा ही किया। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। मेरे प्रियो, हम इसे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं। जी हाँ, सच तो यह है कि तीनों ही दोषी थे। हम मनुष्यों के प्रश्न सुनते हैं, परमेश्वर जल प्रलय क्यों लाया, परमेश्वर ने भूकंप क्यों आने दिया, परमेश्वर ने शिशु संहार क्यों होने दिया। आज हम मनुष्य के स्वार्थ, लालसा, लोभ के परिणाम का दोष परमेश्वर को देते हैं। बाढ़ और भूकंप का कारण यही है। मनुष्य नदी के तट पर बसना चाहता है, और जब नदी प्राकृतिक रूप में उफनती है तो वह उसे बाढ़ कहकर परमेश्वर को दोष देता है। मनुष्य अपना स्वार्थ देखकर तटवर्ती क्षेत्रों में बसता है कि वह अच्छा स्थान है, वहां यातायात की सुविधा है, वहां व्यापार करने का भी अच्छा अवसर है। उसका लोभ और लालसा उसे संकट के क्षेत्र में बसने पर विवश करता है। मनुष्य ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है, और यदि भूकंप आए तो वे गिर सकती हैं। मनुष्य खुले मैदानों में बसना नहीं चाहता जहां भूकंप का संकट नहीं है, क्योंकि वहां भोग विलास नहीं है। हमें भूकंप के लिए परमेश्वर को दोष नहीं देना है। मेरे प्रियो, हम अपने विचारों में भी परमेश्वर को दोष देते हैं। वे लोग कहते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ में भलाई है और बाएं हाथ में बुराई है। भाग्यवादी कहता है कि सब कुछ अंधाधुंध चल रहा है। वे कहते हैं कि यदि परमेश्वर है तो उसने जगत को 8 दिन की घड़ी के अनुसार चला दिया है और दूर हो गया है। भौतिकवाद मनुष्य जाति की समस्याओं का कारण प्राकृतिक पाचन क्रिया को बताता है, जो किसी भी अंग से संबंधित हो। परमेश्वर अपने वचन में इन विचारों का उत्तर देता है। परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है, उसमें संपूर्ण भलाई, संपूर्ण ज्योति, संपूर्ण औचित्य है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में लिखता है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 30 पद में प्रभु यीशु ने एक अति रोचक बात कही, इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इसका अर्थ है कि उसमें न तो बुराई है और न ही पाप है, परंतु शैतान जब भी मेरे आसपास होगा तब वह मुझ में कुछ न कुछ अवश्य पाएगा। मेरे प्रियो, यहां मैं आपके साथ धर्म विज्ञान के विचार को बांटना चाहता हूं। यीशु पाप नहीं कर सकता। अब कोई कहे तो उसकी परीक्षा क्यों ली गई? मती रची सुसमाचार 4 अध्याय उसके 7 पद में प्रभु यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर मनुष्य को पाप से बचाना चाहता है, वह मनुष्य को पाप की परीक्षा में क्यों डालेगा? वह उसे पाप से बचाना चाहता है, वह मनुष्य को पाप से कभी नहीं परखता है, परंतु वह पाप को अनुमति देता है, जैसा हम आगे देखते हैं। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि मनुष्य प्रायः अपनी पाप के जीवन में हो करके परमेश्वर को ही दोषी ठहराता है, परंतु याकूब स्पष्ट कहता है कि न तो किसी बुरी बात से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। लोग पूछते हैं कि ऐसा है तो प्रभु यीशु की परीक्षा क्यों ली गई थी? प्रभु यीशु ने शैतान को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वचन कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 30 पद में प्रभु यीशु ने कहा था कि संसार के सरदार का उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, उसकी परीक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य था कि यीशु को निर्दोष प्रकट करे। उसमें पाप नहीं था। उसकी परीक्षाएं वे थी जो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को लालायित करती हैं, भौतिक, मानसिक और आत्मिक परिप्रेक्ष्य। परीक्षाओं का उद्देश्य यह दर्शाना था कि मानवीय देह में भी यीशु परीक्षाओं में नहीं गिरेगा। यदि वह परीक्षाओं में गिर जाता तो हमारा उद्धार संदेह में पड़ जाता। अतः उसकी परीक्षाओं का उद्देश्य था कि वह पाप नहीं कर सकता, जो स्पष्ट हो जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था तब मेरे घर के पास एक नदी बहती थी। वैसे तो उसमें पानी नहीं होता था, परंतु बरसात के समय उमड़ने लगती थी। एक बार ऐसी ही बाढ़ ने वहां के एक रेलवे पुल को गिरा दिया। कंपनी ने वहां स्टील का नया पुल बनाया। पुल तैयार हो जाने के बाद उन्होंने उस पर 2 इंजन खड़े करके उनकी सीटी जोड़कर एक साथ बजाई। आवाज सुनकर हम सब वहां पहुंचे कि देखें यहां पर क्या हो रहा है। एक व्यक्ति ने साहस करके इंजीनियर से पूछा, सर यह क्या हो रहा है, यहां आप सब क्या कर रहे हैं? इंजीनियर ने उत्तर दिया, हमने यह पुल बनाया है और अब इसका परीक्षण कर रहे हैं। अतः उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों, आप क्या सोच रहे हैं, क्या यह गिर जाएगा? इंजीनियर सीधा खड़ा होकर के बोला, यह निश्चय ही गिरेगा नहीं, और हम यही सिद्ध कर रहे हैं। इसी प्रकार यीशु की परीक्षा ली गई कि सिद्ध हो जाए कि हमारा उद्धारकर्ता पाप में नहीं गिर सकता है। परमेश्वर की परीक्षा पाप से नहीं होती और न ही परमेश्वर किसी की परीक्षा पाप से करता है और न ही लेता है, परंतु परमेश्वर पाप के द्वारा हमारी परीक्षा होने देता है। दूसरा शामुएल की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इसराइल और यहूदा की गिनती ले। मेरे प्रियो, यह तो पाप था, फिर परमेश्वर ने क्या दाऊद को पाप में डाला? मित्रों, बाइबल को समझने के लिए आपको पूरी कहानी को भी समझना होगा। दूसरा शामुएल की पुस्तक में घटनाओं को मानवीय दृष्टिकोण से व्यक्त किया गया है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर इसराइल से क्रोधित है और उसने दाऊद से यह गलत काम करवाया। परंतु पहला इतिहास की पुस्तक में हमारे सामने इस घटना का ईश्वरीय दृष्टिकोण रखा गया है। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइल की गिनती ले। दाऊद को पाप करने के लिए किसने बहकाया था? शैतान ने, परमेश्वर ने नहीं। इसलिए आप परमेश्वर को दोषी न समझें। परमेश्वर ने शैतान को इसकी अनुमति दी क्योंकि इसराइल के पापों के कारण वह क्रोधित था। परमेश्वर बुराई से किसी की परीक्षा नहीं लेता है। मेरे प्रियो, हमारे दुराचार की स्मृति का उत्तरदायी कौन है? हमें पाप करने पर विवश करने वाला कौन है? कोई कहेगा, आपने अभी तो कहा है कि वह शैतान है। देखिए पद 14 में याकूब हमें क्या कहता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मेरे प्रियो, यह देह के पाप के विषय में कहा गया है। आप बुराई की ओर आकर्षित होते हैं तो कौन उत्तरदायी है? आप बुरी लालसाओं में गिरते हैं तो इसका उत्तरदायी कौन है? न तो परमेश्वर उत्तरदायी है और न ही शैतान। आप ही हैं जो इसके उत्तरदायी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, सोचने और समझने की शक्ति दी है, भले और बुरे को पहचानने की शक्ति दी है। तो अब मुझे देखना है कि इसका उत्तरदायी कौन है। एक बार एक व्यक्ति पहाड़ों में भटक गया। चलते चलते वह एक स्थान पर आया जहां कुछ लड़के खेल रहे थे। उसने उनसे पूछा, मैं कहां हूं? एक छोटा लड़का उसे आश्चर्य से देखकर उसी की ओर उंगली से संकेत करके बोला, आप यहां हैं। मेरे मित्रों, जब आप पूछते हैं इस काम के लिए मुझे किसने ललचाया, परमेश्वर कहता है कि तुम ही तो हो। समस्या तुम्हारी ही है, तुम्हारे अंदर में है। और इसलिए मुझे और आपको भी समझना है कि इसका उत्तरदायी कौन है। आगे हम देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यह मानव जाति के व्यक्तित्व के व्यक्ति के विषय घोषणा है। जिस प्रकार हमारे उंगलियों के निशान एक दूसरे से अलग हैं, उसी प्रकार हम में से हर एक नैतिक स्वभाव भी अलग हैं। हमारी अपनी ही मानसिक दशा है, अपनी ही विलक्षणता है। हम सब में कुछ ना कुछ भिन्नता है और इसलिए हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने साथी मित्र से कहता है, हम सब में अलग अलग विलक्षणता है। उसका साथी या मित्र कहता है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मुझ में कोई विलक्षणता नहीं है। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का तुम उत्तर दो। आप सीधे हाथ से चाय में चीनी घोलते हैं या उल्टे हाथ से? उसने कहा, सीधे हाथ से। पहले वाले ने कहा, यही आपकी विलक्षणता है, लोग तो चम्मच से चीनी घोलते हैं। यही आपकी विलक्षणता है। हम सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, एक पर शराब की तो दूसरे पर किसी अन्य प्रकार की। जी हां, एक पर शराब पीने की परीक्षा आती है तो दूसरे पर व्यभिचार करने की या अधिक खाने की परीक्षा आती है, तो किसी पर और अन्य प्रकार की परीक्षा आती है। अतः हम सब में समस्या भीतर ही है। बाहरी कारण या प्रभाव हमसे पाप नहीं करवा सकता। हमारे पुराने स्वभाव में समस्या है। हम मनुष्य हैं और पाप का स्वभाव हम में वास करता है और यही स्वभाव हमें पाप की ओर ले जाता है। एक छोटा बच्चा रसोई में खेल रहा था। उसने टॉफी का डब्बा उतार लिया। तभी उसकी माता ने पुकारा, बेटे रसोई में क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, परीक्षा से लड़ रहा हूं। परंतु वह गलत जगह में लड़ रहा था। आज अनेक जवान भी ऐसे ही स्थानों में लड़ रहे हैं। बहुत सी बातें तो अपने आप में बुरी नहीं होती है, परंतु उनका उपयोग हम गलत करते हैं। भोजन अच्छा है, परंतु आप पेटू हो जाते हैं तो यह पाप हो जाता है। शराब एक दवा है, परंतु आप शराबी बन जाते हैं तो समस्या होती है। विवाह की सीमा से पार होकर व्यभिचार में बढ़ना अच्छा नहीं है, परंतु विवाह की सीमा के अंदर में रहना, पत्नी के साथ संबंध रखना अच्छा है, परंतु बाहर यह हमारे लिए हानिकारक है। आज की नए नैतिकता के कारण समाज एड्स के प्रकोप में है, जिसके कारण बहुत से लोग मर रहे हैं। मेरे मित्रों, मनोवैज्ञानिक हमें अपराध बोध से मुक्ति दिलाने के प्रयास में है। मुझे एक विश्वासी अध्यापक ने बताया, आपको अपराध बोध की शिक्षा आवश्यकता से अधिक देने के निर्देश हैं। अपराध बोध आपके जीवन का एक ऐसा भाग है जैसा आपका दाहिना हाथ। आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। परंतु अभक्त मनोवैज्ञानिक अपराध बोध को गलत तरीके से हटाना चाहता है। एक बार एक मसीही महिला ने मुझे फोन पर कहा, प्रचारक साहब, मेरे साथ एक भयानक घटना हो गई है। मैं परीक्षा के कारण मानसिक आघात का शिकार होने जा रही हूं। मेरे डॉक्टर ने मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास भेजा है। जब उसने यह जाना कि मैं विश्वासी हूं तो कहा, आप नीचे मैखाने में जाएं और जो सबसे पहला पुरुष आपको मिले उसके साथ हो लें तो आप अपराध बोध से मुक्ति पा लेंगी। मैंने उससे कहा कि यह तो वास्तव में एक भयानक परामर्श है। आज ऐसे ही परामर्श हमें संसार से मिलता है, परंतु आप किसकी ओर जाते हैं, परमेश्वर की ओर या संसार की ओर? कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आपकी पृष्ठभूमि कैसी है? क्या आपकी माता आपसे प्रेम करती थी? जब आप अपनी माता के गर्भ में थे तब क्या कुछ असामान्य घटना घटी थी? यदि आप कहें वह एक बार आंधी में फंस गई थी, मनोवैज्ञानिक कहेगा कि इसी कारण आपके साथ यह समस्या है। वह अपने रोगी की समस्या का दोष उसकी माता को देता है। मेरे मित्रों, आप जिन समस्याओं का दोष दूसरों पर डाल रहे हैं उनमें से अधिकांश का समाधान स्वयं खोज सकते हैं यदि आप जीवित प्रभु यीशु से, जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, यह कहें, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, तो वह आपको अपराध बोध से मुक्ति दिलाएगा। केवल वही है जो ऐसा कर सकता है। नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। पाप मुक्ति की याचना की सहक्रिया भीतर होना है। याकूब कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 32 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैं सबको अपनी ओर खींचूंगा, परंतु ठट्ठा करने वाला कहता है वह मुझे नहीं खींचेगा। मेरे मित्रों, वह आपको विवश नहीं करेगा। होशे कहता है कि हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रेम का बंधन काम में लेता है। वह आपको उत्तेजित करने और जीतने के लिए प्रेम और अनुग्रह का उपयोग करता है। यह तो स्पष्ट है कि आज बुराई अच्छी लगती है, वह जीत लेती है। लिखा है कि पहले तो मूसा पाप की विलासिता में लिप्त था। मनुष्य ललचाया जा सकता है, यदि वह फंस गया तो शराबी या नशेड़ी या हत्यारा बन जाएगा। इसलिए हम भी अपने आप को देखें कि कहीं हम भी तो उस बुराइयों का या लालच का सामना नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उसमें फंस तो नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि इस समय आप किस प्रकार की स्थिति में हैं, परंतु यह निश्चय है कि हम में से हर एक परीक्षा का सामना करता है। यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा में हैं, तो आइए आज हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेर लें, क्योंकि वही है जो मुझे और आपको मुक्ति दे सकता है, वही है जो मुझे और आपको छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वह मुझे और आपको बचाना चाहता है, शांति और आनंद देना चाहता है। मेरे प्रियो, यह जीवन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है, जिसे परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए उस परमेश्वर की निकटता में रहें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दे सकें। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन पर विचार करें और एक सही निर्णय लें, ताकि हम परमेश्वर की निकटता में रहकर उसको महिमा दे सके, ना कि पाप में धंसते चले जाएं और पाप में और बुराइयों में मग्न हो जाएं। आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परंतु क्या आप बचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए आज हम परमेश्वर के पास आ जाएं और उससे कहें, प्रभु, मैं इन पापों से बाहर आना चाहता हूं, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, मैं यह जीवन जीना नहीं चाहता हूं। तब निश्चय ही परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में अवश्य ही आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के हाथों को थामेंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।